ओम शांति। मधुबन की इस पावन भूमि में विशेष तपस्या का गोल्डन चांस आज उल्लासनगर के भाई बहनों को मिला है। मधुबन पावन भूमि, तपस्या भूमि, बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि। यहाँ योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। गीत है ना, कण कण से तेरी याद आती है। किसी भी स्थान पर चले जाएं, बाबा ने यहाँ क्या किया, बाबा यहाँ क्या करते थे, एक एक बाबा का स्थान शिव बाबा की याद दिलाता है। तो ऐसा सौभाग्य आप सबको मिला जो पांडव भवन में रहकर विशेष योग के गहन अनुभव करने के लिए आप यहाँ एकत्रित हैं। योग की विभिन्न स्टेजेस बाबा ने समय प्रसमय सुनाई हैं, और कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे योग शब्द क्यों कहते हो, योग शब्द तो हठयोगियों का है, तुम तो बाबा को याद करो बस। इसलिए योग योग कहने से कई बार ऐसे लगता है कि बहुत मेहनत है, योग टूट जाता है, लेकिन जिससे प्यार होता है, स्नेह होता है, प्राप्तियां होती हैं, संबंध होते हैं, उसकी याद स्वतः आती है। तो बाबा हम सबका सर्व स्नेही, सर्व संबंधी है। हम सब का एक ही दिल का आवाज है कि हम सब का बाबा एक है, और हम दिल से यही कहते हैं, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जब है ही एक बाबा हमारा, उसी से हमारे सब संबंध हैं, उसी से हम सब प्राप्तियां कर रहे हैं, तो उसके सिवाय और याद भी कौन आएगा। इसलिए एक बाबा की याद में, उसके प्यार में समा जाना, यही वास्तव में योग यथार्थ है। लेकिन बाबा हम सबको योग की गहराई भी बताते, जब ऐसी तपस्या आप सब करते हैं तो ऐसी तपस्या भट्टी के अंदर जो हमारा मूल लक्ष्य है, हमारे किए हुए विकर्म पाप नाश हो जाएं और हमारे संस्कारों में दिव्यता आ जाए, पवित्रता आ जाए, संस्कार दिव्य और अलौकिक बन जाएं, इसके लिए योग को तपस्या के रूप में कहने की आवश्यकता है। योग तपस्या भट्टी इसको हम कहते हैं। वैसे भट्टी शब्द के अंदर कई रहस्य समाये हुए हैं। दुनिया में भी भट्टी शब्द जब आता है तो एक तो भट्टी याद आती है ईंटों की, जहां ईंटें पकाई जाती हैं, कच्ची ईंट को पक्की बनाने के लिए भट्टी में डालते हैं। दूसरी भट्टी जिसके अंदर सोने में जो मिक्स खाद है उसको निकाला जाता है, अलाय कहते हैं, उसको अलग करते हैं। भट्टी तेज भट्टी के अंदर सोने को डाल देते हैं तो उसकी अलाय बाहर हो जाती है, शुद्ध हो जाता, प्योर हो जाता है। तीसरी भट्टी धोबी की होती है, जो कपड़े चढ़ाता है, गर्म करता है, फिर छटका लगाता है, साफ हो जाते हैं। चौथी एक लोहार की भट्टी होती है, जो रूप परिवर्तन, लोहे के अनेक रूप परिवर्तन कर देता है। और ये हमारी पांचवी भट्टी है, योग भट्टी। क्या करेंगे इसमें, हमारे संस्कार चेंज हो जाएं, रूप परिवर्तित हो जाए, पुराने संस्कारों का बीज जो है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि बार बार हम सबको वही संस्कार कहीं न कहीं से धोखा देते हैं। हमारे आदिकाल के संस्कार, जो अनादि आदि के पवित्र और शुद्ध संस्कार हैं, उन संस्कारों का प्रैक्टिकल स्वरूप आत्मा बन जाए और मध्यकालीन संस्कार जो देहभिमान की उत्पत्ति है वो भस्म हो जाए, इसके लिए हम सब तपस्या भट्टी में आए हैं। क्या करेंगे इसके अंदर, क्या ऐसा लक्ष्य रखेंगे जो एकदम रियल सच्चा डायमंड बन जाए। वैसे कहते हैं डायमंड का दाग निकालने में बहुत मेहनत है, निकलता नहीं है, उसको काटना पीटना पड़ता है, बहुत उसके टुकड़े करने पड़ते हैं। प्योर डायमंड बनाने के लिए अगर उसमें कई दाग हैं तो कट कट करके बहुत छोटा सा रूप रह जाता है, वैसे दाग निकलता नहीं है। लेकिन हम सब आत्माएं चैतन्य डायमंड है और इस डायमंड पर जो विकारों का दाग लगा है उससे हम मुक्त हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इस डायमंड को परखने की जरूरत है और जब एकांत में हम सब बैठते हैं, आप सबने शायद डायमंड्स के जो व्यापारी हैं, जो डायमंड्स का विशेष धंधा करते हैं, एक बार मुझे एक व्यापारी अपनी दुकान पर ले गया था और कहने लगा था कि देखो आप डायमंड के मिसाल देते हो, आपको मैं बहुत छोटा सा डायमंड एक दिखाता हूँ और इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपया है। एक छोटा सा बिल्कुल डायमंड था और उसको जब उसके आगे रखा मैग्नीफाई ग्लास, पहले ग्लास से देखते थे, आज तो कंप्यूटर में उसको बड़े रूप में देखते हैं और उसमें कहाँ पर क्या है वो स्पष्ट झलकता है, दिखाई देता है। तो उसने उसको बहुत महीन बारीकी से दिखाया कि देखो आप इतने छोटे छोटे डायमंड्स हैं, बहुत कीमती हैं, बहुत वैल्यूबल हैं और ये कैसे इनको हम लोग घिसते हैं, साफ करते हैं, तैयार करते हैं, इसका बहुत बड़ा बिजनेस सूरत में चलता है, फिर सूरत से बॉम्बे और दूसरी जगह पर वो सप्लाई करते हैं। तो जब मैं देख रहा था तो मुझे तो उसको देख करके कहा कि भाई तुमने ये डायमंड तो दिखाए, हम इन आंखों से देख सकते हैं, किसी भी तरह से देख लिया, लेकिन आत्मा इतना सूक्ष्म डायमंड इस शरीर में चमक रहा है, उसको देखने के लिए आपके पास कोई यंत्र है? हैं? और बाबा ने हम सबको दिव्य नेत्र दिया है और ऐसे एकांत में जब हम बैठते हैं बिल्कुल स्थिर हो करके तो अपने डायमंड को हम देख सकते हैं। हमारी दादी जी एक बड़ा अच्छा अनुभव सुनाती थी, दादी प्रकाशमणि, कभी कभी हम उनसे रूह रियान करके पूछते थे दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, तो दादी कहती थी मेरा पुरुषार्थ बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं क्या करती हूँ, दादी ऐसे हाथ लिख करके ऐसे कहती थी, मैं इस हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर अपने इस डायमंड को निकाल के ऐसे सामने ले आती हूँ और फिर उसको बहुत सूक्ष्म दृष्टि देती हूँ कि हे डायमंड तेरे के अंदर अभी तक कौन से दाग हैं। तो बाबा मुझे अपने डायमंड को दिखाता है और घुमाता है, कहता बच्ची ये दाग सब निकल गए तेरे, बहुत प्योर डायमंड तुम बन गई है, बहुत वैल्यूबल डायमंड बन गई है। ये अभ्यास दादी ने बहुत समय तक किया है लास्ट के दिनों में, उस डायमंड को प्योर बनाने के लिए, रियल बनाने के लिए ये तपस्या चाहिए। क्या? इस देह से डिटैच, मैं एक बहुत चैतन्य सूक्ष्म डायमंड हूं, एक सूक्ष्म मणि हूं और उस मणि को एक तीसरे नेत्र से देखना, अनुभव करना, अपनी भी मणि को देखो और जो सामने आए उसके भी चमकती हुई मणि को देखो, कितनी प्योर कितनी रियल है। भले उसके अंदर अभी देह विमान के कारण कई प्रकार की अलाय मिक्स हो गई है, खादे मिक्स हो गई हैं, लेकिन अगर वो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाए और बाबा की करंट ले, किरणें ले, तो डायमंड प्योर हो सकता है। बहुत शुद्ध बन सकता है। तो ऐसे एकांत में बैठ करके आप सभी 3-4 दिन यहां रहेंगे और मैं समझता हूं ये लक्ष्य तो आपको मिल ही गया होगा। हम सब प्रकार की आवाज की दुनिया से यहां परे हैं, बहुत शुद्ध पवित्र सुंदर ठंडी हवाओं के बीच में तपस्या कर रहे हैं और उसमें बैठ करके अपने आप को निहारने का बहुत सुंदर मौका है। जब भी क्लासेज के बीच बीच में भी ये अभ्यास आप कर सकते हैं, इस देह से डिटैच हो जाओ, ब्रुकुटी आसन पर अपने चमकते हुए हीरे को देखो और बाबा के पास बुद्धि के बल से पहुंच करके उसकी बहुत सूक्ष्म शक्तियां लेजर किरणों की तरह आत्मा के ऊपर अनुभव करो। ऐसे लगे जैसे वो किरणें डायरेक्ट मेरे ऊपर आ रही हैं और उसके द्वारा मैं आत्मा बहुत प्योर शुद्ध बनती जा रही हूं। वास्तव में जो आप सब इतना समय निकाल करके अपने व्यापार धंधे से निवृत्त होकर के यहां आए हैं, हमारा यही एक लक्ष्य रहे कि ये 3 दिन के अंदर मैं अपने डायमंड को जितना चमका सकूं, जितना सत्व प्रधान बना सकूं, स्वच्छ हीरा बन सकूं, उतनी तपस्या करूं, मेहनत करूं। और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस बार बार इस देह भान से, इस देह की कुटिया में ही बैठ करके डिटैच हो जाओ। कुटिया अलग नहीं बनानी है, लेकिन यह भ्रकुटी आत्मा की कुटिया है और इस कुटिया में बैठी हुई मैं एक चमकती हुई मणि इस देह से डिटैच हूं। आप अनुभव करेंगे, कुछ समय के लिए ऐसे अनुभव करो जैसे बिल्कुल अलग है। जैसे कोई आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, उसकी बॉडी पड़ी होती है, सब कुछ है लेकिन वो ज्योति निकल गई, वो अलग हो गई। अभी कल परसों एक मैं वीडियो देख रहा था, जापान के साइंटिस्ट ने आत्मा जब निकलती है तो उसके फोटोग्राफ्स लिए हैं। वैसे कोई ले नहीं सकते, लेकिन वो वीडियो बनाई है उन्होंने और उसमें दिखाया है कि कैसे वो धीरे धीरे शरीर से डिटैच होकर के एक सूक्ष्म शरीर में जाती है और वो सूक्ष्म शरीर को लेकर के इसे उड़ जाती है। सिर्फ बिंदी नहीं दिखाई दी उसमें, लेकिन उसके साथ एक बहुत सुंदर लाइट का शरीर दिखता है और उस लाइट के शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है। हम सबको भी बाबा यही अभ्यास कराते हैं कि बच्चे इस मिट्टी की हड्डी मांस की इस बॉडी से, इस पिंजड़े से बीच बीच में निकलो और अपने लाइट के शरीर से वो सूक्ष्म वतन मूल वतन की यात्रा करो। यह अभ्यास है ना, यही योग की गहराई है। और जितना इस गहराई का आप अच्छा अनुभव करेंगे, आत्मा के 7 गुणों में बहुत अच्छी वृद्धि अनुभव होगी। जब आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज में स्थित हो जाती है और बाबा की उसके ऊपर किरणें आती हैं, तो वो किरणें 7 गुणों की हैं, ज्ञान की, पवित्रता की, शांति की, प्रेम की, सुख की, आनंद की, शक्तियों की। ये 7 किरणें जैसे बाबा की उस ज्योति बिंदु से निकल करके मेरे ऊपर आ रही हैं, उस सागर की वो किरणों के नीचे मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही हूं। तो ये 7 गुण डेवलप होकर के आत्मा बिल्कुल सतो प्रधान बन जाए, सतो गुणी बन जाए। और उसकी विधि और कोई नहीं है, कोई और मेहनत नहीं करनी है। मैं आत्मा एक भ्रकुटी आसन पर हीरा हूं, चमक रहा हूं, इससे अलग हूं। और कई बार ऐसे आपको अनुभव होगा जैसे लगेगा ये अलग है, मैं अलग हूं, जैसे वस्त्र है, मैंने इसको ग्रहण किया है। बहुत आत्मा इस देहभान के अंदर चिपक चुकी है। कुछ भी होता है, फौरन अगर एक छोटी सी चींटी भी किसी स्थान पर आके काटने लगेगी तो फट से ध्यान जाएगा, योग टूट जाएगा, फट से वहां चला जाएगा। क्यों? ब्रेन बहुत एक्टिव हो गया है और वो एक्टिव ब्रेन को पता फट से पता चलता है कि यहां ये हो रहा है। ऐसी आत्मा इतनी शक्ति संपन्न बन जाए जो शरीर में आए और शरीर से डिटैच हो जाए। जब आत्मा इस शरीर से डिटैच अनुभव करने लगेगी तो उसके सातों गुण उसके अंदर भरते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बन जाएगी, पवित्रता की एक सुंदर पर्सनालिटी आ जाएगी, गहन शांति का अनुभव होने लगेगा, प्यार के सागर में वो डूब जाएगी, उस सुख का अच्छा अंदर का अनुभव होने लगेगा, आनंदित अनुभव करेगी, सब शक्तियां उसके अंदर आ जाएंगे। कभी इस ब्राह्मण जीवन में आपने सुख का अनुभव किया है, जिसको बाबा कहता है तुम बच्चों का, गोप गोपियों का अति इंद्रिय सुख गया हुआ है। किसने किसने किया है? बहुतों ने किया है, कुछ कुछ एक ने उठा रहे हैं ना। गोपियों का अति इंद्रिय सुख गया है और योगियों का परमानंद गया है। अति इंद्रिय सुख से भी स्टेज ऊंची परमानंद की है। अगर ऐसे माहौल में, ऐसे सुंदर वातावरण में भी अनुभव हम नहीं कर पाए तो कब करेंगे? चलते फिरते रूह रियान करते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। क्या मेरी जीवन बाबा ने बनाई है, किस कीचड़े से निकाला है, कितनी स्वच्छ पवित्र खान पान रहन सहन एकदम इसी जीवन में ब्राह्मण से फरिश्ता बना दिया हैं सबके बीच में, लेकिन कोई में अटके लटके नहीं है, फरिश्ते हैं सब, अपने हैं कोई अपना नहीं है, सबके साथ अति प्यार है और एक सेकंड में सबसे अलग हैं। कितनी सुंदर लाइफ बाबा ने बनाई है, चिंतन करो क्या बाबा ने हमारे जीवन दी है। और वो बाबा को ऐसे प्यार से याद करते करते बाबा के प्यार में खो जाओ, आपको लगेगा एक एक रोम रोमांचित हो गया है, एकदम प्रफुल्लित हो गई आत्मा, सुख का एकदम बहुत अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों का वो सुख नहीं है जो क्षणिक मिलता है कोई विकारों के आधार से, लेकिन अतीन्द्रिय सुख, आत्मा जैसे उसमें खो गई, समा गई, प्यार में डूब गई। और जब किसी आत्मा को मेरे द्वारा कोई अच्छी चीज प्राप्त होती है और उसके दिल की दुआएं मुझे मिलती हैं, वो दिल से थैंक्स देता है, सामने वाली आत्मा को कोई प्राप्ति हो जाती है तो आत्मा आनंदित होने लगती है। प्राप्तियां आनंद की स्टेज का अनुभव कराती हैं। बहुत जैसे बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है बाबा से, परिवार से, जिस आत्मा के संबंध संपर्क में है, मिलन से सुख का अनुभव हो रहा है, बाबा मिल गया, इतना अच्छा जीवन प्राप्त हो गया, बाबा के गुण गा रहे हैं, बाबा की महिमा कर रहे हैं, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया। और ये महिमा करते करते बाबा के प्यार में जब खो जाते हैं तो आत्मा एकदम अतीन्द्रिय सुख का आनंद का अनुभव करने लगते। लेकिन जब इस सुख की लहरें दूसरों तक पहुंचती हैं और वो सुख की लहरों के आधार से दूसरी आत्माएं जब अच्छे अनुभव करने लगती हैं तो ये आत्मा आनंदित होने लगती, वाह क्या बाबा ने पार्ट दिया है, क्या जीवन दी है, कितनी आत्माएं सुखी हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। तो इस संगम पर ये अनुभव करना योग के साथ साथ, योग सिर्फ ऐसा नहीं है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, थोड़े दिन थोड़ी देर के लिए चिंतन किया और फिर बुद्धि इधर चली गई, उधर चली गई, भटक गए, जैसे कोई सागर के तले में चला जाए, ऊपर तो लहरें हैं, अंदर कितनी शांति है, कितनी शीतलता है, कितने रतन है। योग का गहरा अनुभव माना उस ज्ञान सागर के तले में चले जाना, सब शुद्ध बुद्ध समाप्त, संकल्प भी हैं तो बहुत अनुभव के संकल्प हैं, बहुत शीतल संकल्प, बहुत आनंद देने वाले संकल्प हैं, हलचल नहीं है, गति उनकी फास्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अनुभव करते चलो, इसलिए ऐसा क्लास करा रहा हूं, सिर्फ क्लास नोट करने वाला नहीं है, अनुभव करो। एकदम सागर के तले में मैं चला गया और तले में जाकर के उस शीतलता का, उस बिल्कुल सन्नाटा साइलेंस का, हलचल से, सब प्रकार की हलचल से परे स्टेज का तले में अनुभव कर रहा हूं। जितना आप अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित हो जाएंगे ना, आत्मिक स्थिति में, तो आत्मा एकदम डीप ऐसे अनुभव करेगी जैसे सब हलचल समाप्त हो गई, कोई हलचल नहीं, संकल्पों की भी हलचल नहीं, कहीं कुछ भी हो रहा है। बाबा एक बार कह रहे थे, बच्चे ये जो बच्ची है ना, ये घड़ी, साकार बाबा कहते थे, बच्ची इसकी जो टिक टिक होती ना, आजकल घड़ियां तो बिना टिक टिक वाली आ गई है ना, ये टिक टिक नहीं करती है, लेकिन पहले की घड़ियां जो थी ना उनमें टिक 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 होती थी। तो बाबा, तो बच्ची को इसको शांत कर दो, निकाल दो, यहां से हटा दो, ये भी टिक टिक करती है, इसकी भी आवाज क्यों डिस्टर्ब करे ना, इतनी गहरी साइलेंस जिसमें टिक टिक भी बंद हो जाए। एक है जंगल की शांति, एक शमशान की भी शांति है। किसी ऐसे जगह पर चले जाओ, वहां शांति के, कोई पवित्र जहां पर पूजा पाठ हो रहे हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहां की अपनी शांति होती। एक बार मैं एक आरती में गया था, बहुत अच्छी, हरिद्वार की जब गंगा की आरती करते हैं ना, तो मुझे कहने लगे, बड़ा अच्छा माहौल होता उस समय, शाम के समय में आरती का, मैं चलो देखें क्या होता है। इतनी साइलेंस, घंटे इतने जोर जोर बज रहे थे, लेकिन उसमें बहुत कुछ अलग प्रकार का वातावरण था, वो भी शांति थी, आत्मा को वहां भी रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाती। घंटे बज रहे हैं, आरती हो रही है, कुछ मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, और उसके बीच में गंगा की कल 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 कर धारा बह रही है, साइलेंस में बहुत अच्छा अनुभव होने लगता है, एक वो भी शांति है। एक जंगल में अगर एकांत में चले जाओ, जहां दूर दूर से किसी जानवरों की, पक्षियों की आवाजें आ रही हों, वहां खड़े होकर के सुनो, वो शांति अलग है। शमशान के अंदर जाओ, वहां पर दुखद शांति है, वो भी शांति है। हम कौन सी शांति का अनुभव कर रहे हैं, हमारी कौन सी शांति है? स्वीट साइलेंस, न डेड है, न जंगल वाली है, न मंदिरों वाली है, इन बहुत स्वीट परमधाम की शांति का अनुभव, जहां बाबा परम पवित्र और हम सब आत्माएं निवास करती हैं, बहुत स्वीट साइलेंस, परम धाम की बहुत ऊंची स्टेज का अनुभव योग के अंदर करना, एकदम जैसे मैं बाबा के बहुत समीप चमकता हुआ सितारा बैठा हूं और बाबा की सब शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं, मैं उन शक्तियों के नीचे हूं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अनुभव होगा कि बाबा ये अनुभव मुझे करा रहा है। साकार में आ जाएंगे, वो अनुभव भी खींचता रहेगा आत्मा को। तो उस स्वीट साइलेंस का गहरा अनुभव करने के लिए तले में जाने की जरूरत है, एकदम गुफा में अंदर चले गए जैसे। तो भ्रकुटी आसन पर बैठो और एकदम संकल्पों को, सब हलचलों को शांत करके स्थिर करो। एक एकाग्रता है, दूसरी स्थिरता है, और स्थिरता के बाद उसमें स्वच्छता आती है, और स्वच्छता के बाद स्पष्टता आती है। पानी जब एकाग्र होता है ना, इधर उधर से इकट्ठा करते हैं, तो पहले मैला होता है, इधर उधर की गंदगी भी होती है, कीड़े भी होते हैं, कीचड़े भी होते हैं, लेकिन जब वो पानी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, तो स्थिर होते होते उसके सब कण, उसकी सब मिट्टी नीचे धीरे धीरे बैठ जाती है। जब स्थिर हो गया तो स्वच्छ हो गया, और जब स्वच्छ हो गया तो उसके अंदर 50 फुट, 100 फुट, 1000 फुट गहरा हो, उसमें कोई भी चीज अगर अंदर होगी तो स्पष्ट दिखाई देगी। बाबा जो कहता है, बच्चे मैं जो हूं जैसा हूं, आप जो हो जैसे हो, अपने आप को स्पष्ट देखो, इन नेत्रों से देखने की बात नहीं है, लेकिन अपने दिव्य नेत्र से अपने उस स्वरूप को देखो, बाबा को देखो। वो देखने के लिए बहुत स्पष्टता चाहिए, कोई प्रश्न नहीं, कोई हलचल नहीं, कैसा है क्या है अनुभव तो होता नहीं, कोई चीज दिखाई तो देती नहीं, स्थूल आंखों से देखने की चीज ही नहीं है। स्थूल में आवाज सुनने वाली बात ही नहीं है जिसको आप कानों से सुन लोगे, एक अनुभव की बात, बहुत प्यार के अनुभव में खो जाना। ऐसे लगेगा जैसे वो दिखाई भी दे रही आत्मा, परमात्मा को मैं देख भी रहा हूं, उससे रूह रिहान भी कर रहा हूं, उससे शक्ति भी ले रहा हूं, उससे अपनी बातों का रिस्पॉन्ड भी ले रहा हूं, लेकिन स्थूल में कुछ नहीं है, साकार अनुभव नहीं है, लेकिन एकदम उस निराकारी स्टेज का अनुभव जिससे विकर्म विनाश होते हैं, संस्कार परिवर्तन होते हैं, जिसको बाबा बीज रूप की स्टेज ज्वालामुखी योग कहता है, उस योग का गहरा अनुभव तभी होगा जब सब संकल्प समेटे हुए हों, बहुत एकाग्रता, स्थिरता, स्वच्छता मन के संकल्पों में आ जाए, कोई भी संकल्पों की हलचल बंद। अभ्यास करोगे तो मेहनत नहीं है, अभ्यास की जरूरत है, करते करते हो जाएगा एकदम, बैठ जाओ ऐसे शांति। और फिर जब थोड़ा सा भी बाहर आओ ना, संकल्प दूसरे उठने लगे, तो ऐसे अनुभव करो जैसे ज्ञान सूर्य की डायरेक्ट किरणें आने लगी मेरे ऊपर। जैसे सागर से बाहर निकलते हैं तो सूर्य की किरणें लेने के लिए उस जमीन पर लेट जाते हैं, ड्रेस भी नहीं होती, बाबा के साथ शरीर ही बन करके ज्ञान सूर्य की किरणें लो, चेंज हो जाओगे। सागर के तले का अनुभव किया और बाहर आए तो ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे है, बाबा की बहुत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही हैं और वो आत्मा अपने आप को परिवर्तन करे, ऐसे लगेगा परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो जाएंगे। कल तक जो संस्कार थे अगर ऐसा योग किया तो आज जो दिखाई देगा ये सब परिवर्तन हो गए हैं, आत्मा शीतल हो गई है। वो योगी की स्टेज जिसके अंदर अंग अंग सुगंधित हो जाएं, एक एक कर्म इंद्रिय शीतल और शांत हो जाए, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएं, कोई भी विकार की उत्तेजना उसमें परिवर्तित हो जाए, इसी योग से परिवर्तित हो सकते, ऐसे नहीं परिवर्तित। जब ऐसी एकाग्रता आपकी होगी, स्थिरता होगी और बाबा की किरणें आप अपने आप पर अनुभव करने लगेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये संस्कार तो बिल्कुल पिघल गया, समाप्त हो गया और मैं आत्मा एकदम पवित्र, स्वच्छ, निर्मल बन गई। फिर ऐसी स्टेज के लिए गायन है, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय सब में समान स्टेज बन गई। उस स्टेज को पाने के लिए आपकी ये भट्टी है, साधारण भट्टी करके नहीं जाना, आए भट्टी किया, हाँ ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या अच्छा, कहते क्या अच्छा लगा, अच्छा तो वो है जो हमारा कोई भी ऐसा संस्कार हो वो एकदम समाप्त हो जाए। गुस्से का संस्कार है, विकारों का संस्कार है, ईर्ष्या द्वेष का संस्कार है, आसक्तियों के संस्कार है, बहुत माया के बड़े रूप तो हमने चेंज कर लिए, उन पर तो जीत हो गई लेकिन उनके बाल बच्चे बहुत सूक्ष्म हैं, कहीं न कहीं मर्ज हो जाते, कभी न कभी बाहर आ जाते। जैसे कोई बीज को अगर जलाया न जाए, बीज को ऐसे ही आप संभाल करके रख दो घर के अंदर, लेकिन जब उसको बाहर निकालोगे और उसको हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, धरती का सहयोग मिल जाएगा तो उसमें से अंकुर निकल आएगा। जब तक रखा है ठीक है, लेकिन जब बाहर आया, उसको थोड़ा वायुमंडल मिला तो उसमें अंकुर निकल आए। यदि उसको भून करके, उसको पका करके रख दिया तो कितना भी हवा पानी मिले उसके अंदर कुछ नहीं होने वाला है। ये जो संस्कारों का बीज है, विकारों का बीज है, अगर इस बीज को हमने जलाया नहीं, योग अग्नि में तपाया नहीं, सीधे सीधे मुरली सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, भोग खा रहे हैं, संस्कार चेंज नहीं होते, इतने कड़े हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल भी योगी आत्माएं भी उन संस्कारों को जीत नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो योग अग्नि के रूप में नहीं है, साधारण योग है, इसलिए वो संस्कार कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते, कभी न कभी निकल आते। वैसे तो कहेंगे हम बड़े अच्छे हैं, कुछ नहीं है, कोई से पूछो कहेंगे हमने सब विकारों को जीता हुआ है, क्योंकि उनको कोई परिपेपर नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं घटी। लेकिन जब वो परिस्थिति घट जाती, कोई ऐसा पेपर आता है, तो पता चलता है कि मैंने कहां तक विजय पाई है, सामने आ जाता है, प्रकट हो जाता, क्योंकि हमने बहुत शक्तिशाली याद के द्वारा उसको जलाया नहीं। ये समय आपको जो मिला है, ऐसी तपस्या करो कि ये बीज जो विकारों का है, संस्कारों का है, देहाभिमान का है, वो भस्म हो जाए, परिवर्तन हो जाए, एकदम आत्मा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, जैसी बाबा के घर से इस सृष्टि पर आई थी वैसी बाबा बना करके वापस ले जाना चाहता है। कहता बच्चे योग से बन जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दूसरा रास्ता है मेरे पास, बाबा के बच्चे उस रास्ते से क्रॉस करें तो बाबा को बहुत ख्याल चलेगा। इसलिए बहुत रहम दिल होकर के कहता बच्चे तुम ऐसी तपस्या करो, ऐसी योग की अग्नि जलाओ जो ये सब संस्कार तुम्हारे पिघल करके परिवर्तित हो जाए, तुम एकदम प्योर रियल गोल्ड बनो और मेरे पास आ जाओ। इसके लिए ही तपस्या करनी है, इसके लिए योग के लिए बाबा कहता है कि बच्चे ऐसे अनुभव करने के लिए समय निकालो और जिद करके तपस्या करो। हमारी मम्मा ने, दादियों ने, जानकी दादी ने ऐसी तपस्या की है। कल मेरे को एक जगह से फोन आया कि मम्मा पूर्णिमा की रात में कब बैठ करके योग करते थे। पूर्णिमा की रात जब होती थी तो मम्मा पूरा टाइम बैठ करके चांद को ऐसे देख करके योग करती थी, शीतलता, बहुत शीतलता का अनुभव, प्योर बन गई, एकदम शुद्ध बन गई और चली गई शरीर से। दादियां ऐसा पुरुषार्थ करके ऐसा बनी हैं और हम सबको भी यही लक्ष्य है, जैसा बाबा तू मुझे बनाना चाहता है ऐसे मैं बन जाऊं। इसलिए जो बॉडी कॉन्शियस के संस्कार है ना, उनको एकदम पहले रियलाइज को, महसूस को कि ये संस्कार मेरे राइट नहीं है, और ये राइट नहीं है, इनको मुझे बदलना है। जब तक लक्ष्य नहीं लिया, महसूस नहीं किया, तब तक वो बदलेगा नहीं। बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर के जब तपस्या की जाती है और उसे एकाग्रता के आधार से हम अभ्यास करते हैं तो संस्कार धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, परिवर्तन दिखाई देता है। कल तक इसके अंदर बड़ा गुस्सा था, अब तो बड़ा शीतल हो गया, बड़ा योगी दिखाई देता, क्या हो गया, कहां से बदल गया, क्योंकि उसने तपस्या की है। तो ऐसी तपस्या ही वास्तव में सच्ची योग की गहराई है, जिसके अंदर ज्ञान सागर के तले के अंदर की अनुभूति है, ज्ञान सूर्य की अनुभूति है, और तीसरा एक स्वरूप सेवा का है, जैसे बीज से पूरे वृक्ष को लाइट जा रही है, पानी जा रहा है, शक्ति जा रही है। ये सारा जो कल्प वृक्ष का झाड़ है, मनुष्य का वैरायटी झाड़, आत्मा जब अपने उस भ्रकुटी आसन पर बैठ करके तपस्वी होकर के बैठती है तो उसको अनुभव होता है जैसे पूरे ही वृक्ष को, हर धर्म को वो शक्तियां मिल रही हैं। बहुत बड़ी सेवा है जिसको बाबा कहता है कि बच्चे मनसा द्वारा पूरे वंशावली को लाइट दो, शक्ति दो, सकास दो। तो ये तीन स्टेजेज योग की है। पहला अभ्यास आत्मिक अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, और जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो तीनों स्टेजेज के अंदर क्रॉस करो। पहले तले में चले जाओ, एकदम कुछ समय के लिए भूल जाओ उस समय क्या है, उस तले का अनुभव करो, फिर ऊपर आकर के सूर्य की सकास लो, किरणें लो, दिखाई दे कि उसकी किरणों से मैं आत्मा कितनी चमकने लगी हूं, और फिर बीज बन करके वृक्ष को सामने लाओ और उसको सकास दो, लाइट दो। तो ये स्टेजेज हमारे विकर्मों का नाश करती हैं, संस्कारों का परिवर्तन करती हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है, प्रयोग हम यहाँ सिखाते हैं। आज आप सबको मालूम होगा, नए नए बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं, 2 साल 3 साल संपर्क में रहे हैं, योग कभी किया नहीं है, लेकिन जब यहाँ योग करके उनको सिखाया जाता है कि ऐसे प्रयोग करो, ऐसे प्रयोग करो, तो आज कितने लोगों की बंद आर्टरी हार्ट की खुल जाती है। आज तक जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं वो कभी बात मानते नहीं थे कि जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जो नली बंद हो गई है, वो खुलेगी कैसे बिना ऑपरेशन के। ये तो असंभव सी बात है, लेकिन हमारे योग के प्रयोग करने वालों ने सिद्ध कर दिया कि योग में वो शक्ति है जो कैसी भी बंद नलियां खुल सकती है, लेकिन प्रयोग करने की यथार्थ विधि। योग करने वाले जो बहुत साल से कर रहे हैं उनकी बंद में ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, और जो भावना से आकर के यथार्थ जो बताया जाता है वो कर लेते हैं, उनकी आर्टरी खुल रही है। 99% लोगों की बंद आर्टरीज खुली हैं, करीब 1000 से अधिक पेशेंट बिना ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के ठीक हुए हैं। कैसे हुए? प्रयोग किया है ना। सिर्फ योग नहीं करो, लेकिन योग को यथार्थ समझ करके उनकी शक्तियों को प्रयोग करो। प्रयोग माना यूज करो, उनको कार्य में लाओ। बाबा से हमने सब शक्तियां ली हैं, लेकिन समय आ गया हमने उनका प्रयोग नहीं किया तो शक्तियां बेकार जा रही हैं। तो योग में बाबा से शक्तियां लेकर के अपने आप को समर्थ स्टेज में ला करके, बाबा कई बार कहता है बच्चे जब सीट पर कोई होता है तो उसका ऑर्डर सब मानते हैं, अगर सीट से उतर करके ऑर्डर करेगा तो कोई कहना नहीं मानेगा। आपका मन बुद्धि संस्कार और आपकी ये सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां कहना तब मानेंगी जब आत्मा राजा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित होगा। ये स्मृति रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर बैठ करके इन मन बुद्धि को आर्डर कर रही हूं। परसों बाबा की मुरली में था, विश्व के राज्य का अधिकार उन बच्चों को प्राप्त होता है जिन्होंने संकल्प और समय पर संगम पर अधिकार पाया है। संकल्प पर मेरा अधिकार हो जाए, जो चाहूं वही संकल्प चले, और जितना समय चाहूं वो संकल्प चलाऊं, और फिर स्टॉप करना चाहूं तो रोक दूं। है शक्ति इतनी? बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस पर अभ्यास किया होगा। करना कि मैं आत्मा मालिक हूं और ये संकल्प मेरा जा रहा है, मानो इसके प्रति चल गया, अपने प्रति चल गया, कोई चीज देखी उसके प्रति चल गया, कोई अच्छा लगा उसके प्रति चल गया, कोई बुरा लगा उसके प्रति चल गया। चलता तो है ना, बिना चले तो रह ही नहीं सकता, उसका काम ही है चलना। कहते संकल्प जो सारा कल्प चलता है, सारा कल्प ही चलता, रुकता ही नहीं है कभी। अब वो संकल्प मेरे कंट्रोल में आ जाए, चलेगा जरूर, रुकेगा नहीं वो, लेकिन जिधर जाऊं चाहूं उधर जाए, दूसरी जगह न जाए, इतना तो मालिक बनूं। अगर योगी आत्माएं कहें क्या करूं, मेरे संकल्प चल गए, विचार चल गए, मैं क्या करूं, तो ये पराधीन स्टेज है, अधीनता है, अधिकार नहीं है। हम सब इस अभ्यास को जितना बढ़ा सकें, इस संकल्प की शक्ति को कंट्रोल करने का एक ही साधन है, उसको जिधर जा रहा है उधर साक्षी होकर के पहले देखो क्यों जा रहा है, फिर बात करो उससे। आत्मा मालिक बन करके अगर उस संकल्प को देखना और बात करना शुरू कर देगी, वो रुक जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन स्टेज पर बैठ करके उसको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अपने भ्रकुटी आसन की स्टेज पर बैठ करके जब योग में बैठते हो तो पहले देखो किधर जा रहा है तुम, यहां आए हैं, दुकान में क्या रखा है, घर में क्या रखा है, बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, क्यों जा रहा है तुम, क्या जरूरत है इसकी, बात करो, रोको, फिर उसको मोड़ दो। अभ्यास करते करते आपको लगेगा जैसे मैं चाहता हूं चल सूक्ष्म वतन में, चल मूल वतन में, ले जाएगा आपको, सैर कराएगा। इस संकल्प शक्ति पर अधिकार अगर कर लिया तो ये संकल्प आपके सिद्ध होने लगेंगे, जो संकल्प करोगे हो जाएगा। कंट्रोलिंग पावर, इसके लिए बहुत कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो संकल्प पर हमारा पूरा अधिकार हो जाए। समय जो ऐसे ही जा रहा है बातों में, देखने में, सुनने में, बोलने में, मालिक हैं हम, क्यों हम जाएं इन बातों में, क्यों हमारा संगम का अमूल्य समय नष्ट हो। अगर संकल्प और समय पर योगी ने कंट्रोल कर लिया, अधिकारी बन गया, उसके बोल और कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। कोई भी बोल अपसेट करने वाला नहीं निकलेगा, किसी की स्थिति को बिगाड़ने वाला नहीं निकलेगा। आज जितनी समस्याएं, जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसका मूल कारण जहां तक मैं देख रहा हूं वो बोल ही है। बोल पर कंट्रोल नहीं है, जो आया बोल दिया, जिसको आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, उससे कितने संबंध बिगड़ रहे हैं। बाबा कहता बच्चे तो मालिक बन करके जो बोलना है, जितना बोलना है, जब बोलना है तभी बोलो ना। बोलो जरूर, इंद्रिय मिली है बोलने के लिए। ये जबान दो काम करती है, दो काम करती है, और दोनों एक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले, एक संबंधों को बिगाड़ने वाले। अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया गया, इस जबान पर अगर किसी योगी ने कंट्रोल नहीं कर पाया, वो योगी बन ही नहीं पाएगा। अगर खान पान पर उसका कंट्रोल नहीं हुआ, जो देखा उस पर चलायमानी आ गई, ये खाऊं ये खाऊं ये बहुत अच्छा, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, योग भी नहीं लगेगा, मन भी दूषित हो जाएगा, क्योंकि जैसा खाओगे वैसा मन बन जाएगा, वैसा शरीर भी विकसित होगा। इसलिए अगर जबान पर किसी योगी ने अपने कंट्रोल ले लिया कि मुझे जो बाबा ने कहा है, जो श्रीमत दी है, वही खाना है, और जितना जरूरी है शरीर के लिए उतना ही खाना है, हवच के लिए, लालच के लिए नहीं, अगर इस पर कंट्रोल आ गया और दूसरा बोल पर कंट्रोल कर लिया, बस देख लो संबंध कितने अच्छे हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं, और स्वास्थ्य कितना अच्छा हो जाता है। तो योगी माना जिसका अपने मन पर कंट्रोल है, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल है, और अपनी मूल इंद्रियों पर कंट्रोल है। वैसे बाबा हमेशा कहते हैं योगियों को, आज भी मुरली चलाई, ये आंखें बड़ा धोखा देती है, यही क्रिमिनल होती हैं। जो देखते हैं उस पर बुद्धि चल जाती है, वही से संकल्प चल जाते हैं। तो जब हम इस योग युक्त स्टेज पर बैठते हैं तो ये कर्म इंद्रियां हमारा कहना मानने लगती हैं, और वही इंद्रियों से हम काम कराएं, वही हम देखें, वही सुने, वही बोले, मालिक बनकर के रहना। आज का अभ्यास है आत्म अभिमानी स्थिति। जब ये आत्म अभिमानी स्टेज एक नेचुरल रूप ले लेगी, चलते फिरते जैसे देह अभिमान नेचुरल हो गया ना, बाबा चाहता है मेरे बच्चे नेचुरल आत्म अभिमानी बन जाए, नेचुरल आत्म अभिमानी। मैं आत्मा ही कर्म करा रही हूं, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूं, मैं मालिक बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराऊं। प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते आप ऐसे अनुभव करेंगे, मैं मालिक बन करके इन आंखों से कर्म करा रहा हूं, मुख से कर रहा हूं, हाथों से कर रहा हूं, मैं अलग हूं। और जिसने आत्मिक स्टेज का अच्छा अनुभव कर लिया, देह से डिटैच होकर के बाबा से एक सेकेंड में अटैच हो जाएगा, योग लगाने की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप इस देह भान से डिटैच हो जाओ, बाबा आपके साथ आ जाएगा। उसके देह है ही नहीं, वो न्यारा है, बिल्कुल विदेही स्टेज में। ब्रह्मा बाबा भी उसी स्टेज में आ गया, शिव बाबा भी उसी स्टेज में है, दोनों के बहुत सुखद अनुभव आपको होने लगेंगे। मैं तो एक अभ्यास बड़ा अच्छा लास्ट में बताता हूं, जो कर रहा हूं, बहुत सुंदर अभ्यास है। मैं कहता हूं ये अभ्यास आप प्रैक्टिकल करके देखो, एक मैं आत्मा एक लाइट यहां हूं, एक लाइट इधर है, एक लाइट इधर है, त्रिमूर्ति बन करके योग करो। ऊपर ज्यादा एक ज्यादा मेहनत नहीं करो, बाबा ऊपर है, लेकिन ऊपर से उसका आवाहन करो और बाबा को बोलो, बाबा ये मस्तक, ये आपका आसन अकाल तख्त, इस पर आकर के आप भी बैठो। और ऐसा सुंदर अनुभव कि मैं आत्मा उसके दोनों के बीच में चमकती हुई मणि, परम पवित्र दोनों आत्माएं हैं, बाप और दादा, दोनों के बीच में चमक रही हूं। बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी कि मेरे साथ दो लाइट हैं, एक ब्रह्मा बाबा की लाइट है, एक शिव बाबा की लाइट है, तो मैंने उस दिन क्लास कराया कि मेरे साथ तो 3 लाइट हैं, मुझे भी तो नशा होना चाहिए ना। योग क्या है? मैं हमेशा कहता हूं योग योग करके क्यों परेशान होते हो। योग माना जितना आत्म स्थिति का नशा है, जितना ऊंचा सम्मान है, जितनी खुशी है और जितना हल्कापन है। जो जितना हल्का है, सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित कर दी। बाबा आप बैठे हो, मैं क्यों बोझ लूं? आपका यज्ञ है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका सब कुछ है। जब मैं आपका बच्चा बन गया, एक परिवार से बाबा ने कहा तुम बच्चे हो मेरे, बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को बच्चे कहां से आ गए? क्यों इनकी चिंता कर रहे हो? तुम बच्चे बन करके रहो, और बच्चे बन करके रहोगे तो सब बातों से बच जाओगे। इतने लाइट हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ, जो बाबा कहता है मैं तुमको अपनी पलकों पर बिठा करके ले जाऊं। कभी कभी विचार करो तो क्या बाबा कह रहा है, ये पलकें ये हैं, इस पर कोई भी चीज आए के ऐसे टच भी करेगी ऐसे ऐसे कर लेने लगेंगे। कितनी नाजुक पलकें हैं, और इस पर बिठा के बाबा हमको ले जाएगा तो कितना हल्का बनना पड़ेगा। आत्मिक स्वरूप ही हल्का स्वरूप है, और कोई स्वरूप हल्का नहीं है। लेकिन जो आत्मा ने अपने ऊपर बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी जवाबदारियां, बहुत सारे बोझ ले लिए हैं, उठा करके रख रही है, वो बोझ ने उसको भारी कर दिया, बहुत भारी कर दिया, इसलिए उड़ नहीं पाती है। तो योग के अच्छे अनुभव करने के लिए बिल्कुल डबल लाइट स्टेज रखो। मैं आत्मा एक चमकती हुई शरीर, लाइट के शरीर में चमकती हुई मणि हूं, ये डबल लाइट स्वरूप है। हल्की हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, आत्मिक स्वरूप में हूं, लाइट के शरीर में हूं, ये डबल लाइट स्वरूप है। और जब इस डबल लाइट स्वरूप में आत्मा स्थित होकर के बैठती है, बिल्कुल हल्की हो जाती है, तो अपने आप इस हल्की चीज ऊपर जाती है, भारी चीज नीचे आती है। जितने आप हल्के होंगे, सब जवाबदारियां अर्पित कर दी बाबा को, बाबा मैं आपका, आप मेरे, बस। आप देखो योग कैसा लगता है, कितना अच्छा आनंद का अनुभव होने लगता है। तो हल्कापन और खुशी और नशा, ये उड़ने के लिए बहुत अच्छा पेट्रोल है, डबल रिफाइंड पेट्रोल है। और ये पेट्रोल जिसने अपने पास फुल रखा है, बहुत फुल रखो, खाली नहीं, बहुत अच्छे योग के अनुभव होने लगेंगे, गहरे अनुभव होने लगेंगे। और जब योग के गहरे अनुभव होंगे तो एकाग्र होकर के उन अनुभवों को प्रयोग करो। शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, उन पर एकाग्र करके उन किरणों को डालो। कहीं शांति की शक्ति, कहीं प्यार की शक्ति, कहीं सुख की शक्ति। शरीर की जिस प्रकार की बीमारियां, उसी प्रकार के गुण का प्रयोग करो जो उसको आवश्यकता है। उन बीमारियों से भी निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। और साथ साथ अगर कोई संबंधों में रुकावटें आ रही हैं, कोई बहुत आपको अपने इस मार्ग में बढ़ने में विघ्न डाल रहा है, पवित्र जीवन के लिए कोई बहुत रुकावट डाल रहा है, बहुत शुभ भावना रख करके उस आत्मा का भला हो, कल्याण हो, बहुत एकांत में बैठ करके बहुत प्यार से बाबा की शक्ति लो और उसको तो प्रयोग करने की एक अच्छी विधि मैं आपको बताता हूं। आपके पास शक्ति नहीं है, आपको मैं योग करके प्रयोग करूंगी, आपका कभी योग सक्सेस नहीं होगा, मनसा सेवा नहीं कर सको, मेरे पास कहां है। सिर्फ अपने मन बुद्धि को, अपने इस कांच को बिल्कुल प्लेन लाइट, बिल्कुल स्वच्छ बनाओ। बस जितना ये कांच स्वच्छ होगा, बाबा की किरणें ऐसे डायरेक्ट आएंगी और वो रिफ्लेक्ट होकर के उस आत्मा का परिवर्तन करेंगे। जैसे कांच के ऊपर सूर्य की किरणें आती हैं, किसी कांच पर भी आ रही हो, स्पेशल कांच हो तो उससे हमारी एनर्जी, सोलार एनर्जी बनती है। लेकिन अगर इस साधारण कांच के ऊपर भी कोई किरण पड़ करके रिफ्लेक्ट हो गए, तो जितनी सूर्य की किरणें तेज हैं, उस कांच के द्वारा उसकी कई गुना शक्ति बढ़ जाती है। आपको अनुभव है, जैसे लेंस होता है ना, जब एकाग्र लेंस सूर्य की किरणों के नीचे रख दो और उसको कागज पर डाल दो तो आग लगा देता है। यही योग है, और क्या प्रयोग है। ऐसी एकाग्रता मन और बुद्धि की है, स्वच्छता है, एकाग्रता है, एक की तरफ पूरा ध्यान है, उसकी किरणें आई, रिफ्लेक्ट हो गई। किधर रिफ्लेक्ट हुई? जिधर आप चाहते हैं कि ये भाव, ये आत्मा बदल जाए, इसको सुख मिले, इसको शांति मिले, ये बाबा का बन जाए, ये वारिस बन जाए, ये विघ्न खत्म हो जाए, आपने संकल्प किया हो, बाबा के पास आप गए, शांति में बैठ गए और बाबा की किरणें आप पर आई और वो रिफ्लेक्ट होकर के उधर कन्वर्ट हो गए, परिवर्तन हो गए। ये प्रयोग है, और ये प्रयोग रोज 15 मिनट ही करो, बस अधिक नहीं, तो भी आपको बहुत सफलता मिल सकती है। और उसके लिए बहुत अच्छा टाइम बाबा ने हम सबको बताया है, 4:30 से या 4:45 से 5 या 4:30 से 4:45, जो आपको समय लगे 15 मिनट के लिए। ये योग के प्रयोग अपने हर संबंध पर, अपने हर विघ्न पर किया जा सकता है, और इसके लिए हरेक को समय है। बहुत अच्छा ये सवेरे का, बहुत एकाग्र मन से, शुद्ध मन से, बहुत अच्छी भावनाओं से, स्वार्थ वाली भावनाएं नहीं पहुंचेंगे। ये बल चल जाएगा तो ये मदद मिल जाएगी, ये स्वार्थ नहीं है। वो अगर सुधर जाएगा तो उसका भला हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, वो बाबा का वारिस बनेगा, अपना अधिकार ले लेगा। बहुत ऊंची भावनाएं लेकर के प्रयोग को, मेरे को कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, मुझे उसे क्या चाहिए, मैं तो बाबा से सब ले रहा हूं, लेकिन उस आत्मा का भला हो जाए, उसकी गति हो जाए, उसकी सदगति हो जाए, इतनी शुभ भावना रख करके बाबा की शक्तियों का प्रयोग करो। योग यथार्थ हो, उसकी शक्तियों को हम कैच करें और अपने द्वारा रिफ्लेक्ट करें, बस यही प्रयोग है। कई प्रकार के विघ्नों से बहुत सहज मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए समय देना पड़ेगा, मन बुद्धि को बहुत क्लीन बनाना पड़ेगा। कोई इसके अंदर ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, स्वार्थ नहीं, नफरत नहीं, प्रभाव नहीं किसी का, तब ये कांच बड़ा स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र है, और बाबा की किरणें आ रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही है। हम यही योगी खेती में प्रयोग करवा रहे हैं, किसानों को कहते हैं ऐसे करो, वो खेती में इतनी अच्छी सफलता पा रहे हैं, कहते अरे कीड़े भाग गए, बिल्कुल निरोगी खेती हो गई, अच्छी खेती हो गई, कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं। कैसे? छू मंत्र जादू मंत्र थोड़ी है, लेकिन कई बार बाबा कहता हाँ ये जादू मंत्र है। यही हमारे शुद्ध संकल्प जादू मंत्र का काम करते हैं, और कोई जादू हम थोड़ी लगा रहे हैं किसी पर। तो ये अगर ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों को एकाग्र करके प्रयोग करने की यथार्थ विधि होगी, तो बाबा कहता है तुम्हारी रिद्धि सिद्धि नहीं है, लेकिन विधि से सिद्धि है। अगर ब्राह्मण आत्माओं को सिद्धि नहीं मिले तो किसको मिलेगी? तो एक एक बाबा का बच्चा इस संगम पर सिद्धि स्वरूप बन सकता है। उसके हर संकल्प, उसके हर बोल, उसकी हर भावना अवश्य सिद्ध होगी, लेकिन यथार्थ विधि पूर्वक होगी, तो नहीं तो नुकसान हो जाएगा उसे। इसलिए ध्यान रखना कि हमारी बुद्धि बहुत क्लीन रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, और एकाग्र होकर के बाबा से हम शक्तियां लें और फिर उनका प्रयोग करें। ठीक है? तो ऐसे आप 3-4 दिन में अच्छे अच्छे प्रयोग करके अपने संस्कारों का संस्कार कर दो, जो पुराने हैं, जो आपके मार्ग में रुकावट डालते हो। सबसे अच्छी विधि है, बाबा के घर में आए हो, एकांत में बैठ करके रियलाइज करो, महसूस करो, कागज पर नोट कर लो। किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाबा के बॉक्स में डाल दो, बाबा स्वीकार करके उसको भस्म कर देगा। एक विधि ये है कि लिखा और बाबा को अर्पित कर दे, बाबा ये तुम जान। दूसरी विधि है एकाग्र बन करके, बिल्कुल स्थिर होकर के बाबा की करंट लेकर के उसको भस्म करो, फिर से वो उगे नहीं, फिर से वो अंकुरित न हो जाए, इसका ध्यान दो। इस प्रकार के अगर प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूं बहुत अच्छे अनुभव करके और बड़ा अच्छा परिवर्तन अनुभव करके यहां से आप सब जाएंगे। ओम शांति। साकार में ही निराकार का अनुभव करना है ना, अलग थोड़ी करेंगे, हम हैं साकार में। तो जब साकार में आत्मिक स्टेज का हम अभ्यास करते हैं, इस देह से डिटैच होके बैठते हैं, तब बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हो, निराकार स्टेज बन जाते हैं। तो साकार में ही ना, साकार शरीर में रह करके आत्मिक स्टेज का अनुभव, चलते फिरते एक दूसरे को भ्रकुटी आसन पर देखना और अपने आप को इस देह से डिटैच कर लेना, ऐसे लगे ये अलग है, मैं अलग हूं। जैसे वस्त्र पहना ना, ये दिखाई देता ना, ये अलग है, ऐसे शरीर रूपी वस्त्र मैंने धारण किया है। तो आत्मा है साकार में, बोल रही है, चल रही है, कर्म कर रही है, लेकिन आत्मिक स्टेज में है। तो साकार में रहते वो निराकारी स्टेज का अनुभव करते हैं। ओम शांति।
एक जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति।